धौला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 14 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मुनिसुवयजिणवसहं सुवयमुनिवसः सन्तु अम्णमिं कम्माणुयोयमिणमो वोच्छमणे यत्थ गन्थगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। और इस षटखंडागम का जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणाखंड, और वर्गणाखंड के कर्म अनुयोग द्वार की हम चर्चा कर रहे हैं। ये तेरहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 112 पर हम आ गए, 112। अब यहाँ ये जो हमने पहले ये जो कर्म जो है उसका अर्थ होता है क्रिया, उसमें निक्षेप हमने कितने 10 प्रकार के देखे ना, और उसमें से 6 की बात यहाँ चल रही है। अपना जो विषय है वो है प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधः कर्म, क्रिया कर्म, तप कर्म और इरियापत कर्म। तो ये हमने पहले वो सत प्ररूपणा देखी, वो है ऐसी बात देखी, कौन सी मार्गणाओं में कौन कौन से होते उसकी चर्चा की, द्रव्य प्रमाणानुगम में उनकी संख्या देखी, फिर क्षेत्र में हमने देखा कितना क्षेत्र कहाँ रहते हैं, और स्पर्शन भी देख लिया। अब काल की चर्चा अपनी चल रही थी, क्योंकि काल भाव और अंतर वगैरह बात चलेगी यहाँ पर। तो काल में तो हमने देखा कि ओक की अपेक्षा जो है वो तो सदाकाल होता है, परंतु मार्गणाओं में जो है उसकी अपनी बात चल रही थी। तो हमने नरक गति में बात देखी थी, अब तिर्यंच गति में यहाँ हम देख रहे हैं। 112 नंबर के पृष्ठ है, पढ़ेंगे यहाँ पर तिर्यंच गति में। पहले तिर्यंच गति है तो हमें ये नक्की करना है कि तिर्यंच गति में कौन कौन से कर्म होते हैं। एक होता है प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधः कर्म क्योंकि औदारिक शरीर है, और क्रिया कर्म भी होगा, तप और इरियापथन नहीं होगा। तो कहते तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, तो कहते नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। जब एक जीव की अपेक्षा देखना है तो वो ऐसा विचार करना कि एक जीव तिर्यंच गति में कम से कम कितने काल तक रहेगा और अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा। आपको मालूम है अनंत काल रह सकता है, पर मिनिमम कितना रहेगा? हाँ, क्षुद्र भव जिसको कहेंगे, क्षुद्र भव यानी वो लब्धि अपर्याप्तक का एक भव। तिर्यंच में रहने का काल का अर्थ ऐसा है अन्य गति से उसमें आया। अब तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त में तो मनुष्य में से आएगा, तो मनुष्य में से वो तिर्यंच अपर्याप्त कोई भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का अपर्याप्त का भव किया, जिसको हम क्षुल्लक भव कहते हैं, क्षुद्र भव कहते हैं। एक भव करके वापस वो, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त में से मनुष्य में चला गया, तो उसके तिर्यंच में रहने का मिनिमम काल इसको कहेंगे। एक जीव की अपेक्षा प्रयोग कर्म का काल, समवदान का काल, अधक कर्म का काल मिनिमम कितना है उसकी बात है। तो कहते हैं कि वो काल अधक कर्म का नहीं लेना, प्रयोग और समवदान का लेना, क्योंकि अधक कर्म में क्या है, औदारिक शरीर के जो परमाणु निष्कंध छूट गए हैं वो कितने काल तक रहेगी उसकी बात है, वो तो उसका कथन अलग होगा। एक समय से असंख्यात लोक प्रमाण उसमें लेना है, परंतु इसमें क्या लेना है कि तिर्यंच में रहने का काल लेना है प्रयोग और समवदान में। तो कहते हैं एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है। क्षुद्रक कहो, क्षुल्लभ हो, क्षुल्लक कहो, एक ही बात। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। एक पुद्गल परिवर्तन का काल अनंत है, ऐसे कितने पुद्गल, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, तो कितना अनंत काल वो तिर्यंच में से बाहर आया ही नहीं, तिर्यंच तिर्यंच तिर्यंच, कभी एकेंद्रीय कभी पंचेंद्रीय, पर तिर्यंच में ही रहा, उसको कहेंगे इतना काल। अधः कर्म का कितना काल है, तो कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय। यहाँ काल ऐसा लेना है कि तो औदारिक जो उसमें जो औदारिक शरीर पना जो है उसका स्कंद है छूट गया है, उसको कहेंगे उसका उसका औदयिक भाव कहो, या वो औदारिक शरीर पना जिसमें जो रहा है वो कितने काल तक रह सकता है, एक समय में उसका अन्य परिवर्तन हो सकता है, तो एक समय। और मैक्सिमम तो कहते उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण, तब तक वो स्कंद उस रूप से ही रहे, उसका अन्य रूप से परिणमन नहीं हुआ, और वो हमने देखा था स्पर्शन में और क्षेत्र में पूरे लोक में बिखर जाते हैं कहीं पर भी। इसी प्रकार सब मार्गणाओं में अधक कर्म का काल जानना चाहिए, यानी किसी भी मार्गणा में अधक कर्म का काल कितना होगा, भले वो मार्गणा संख्यात जीवों की हो अनंतों की हो, अधक तो एक समय से असंख्यात लोग। अधक कर्म का अर्थ जो औदारिक शरीर के परमाणु जो छूट गए हैं, देखो पेज नंबर 108 पर लेना, 108 पेज पर पहली लाइन में एक जीव की अपेक्षा लिखा ना लास्ट में, मिला पेज नंबर 108, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, क्योंकि जो स्कंद जीव से निर्जीर्ण होने के प्रथम समय में, यानी वो शरीर से छूट गए पहले समय में, औदारिक रूप से रहते हैं, भले वो उसमें से निकले परंतु वो तो उसका स्कंद कैसा है औदारिक रूप से रहा, दूसरे समय में औदारिक नो कर्म भाव का त्याग कर देते, उसका अन्य परिणमन हो जाता है, छुट्टे परमाणु हो अन्य स्कंद रूप हो जाए जो कुछ, उन स्कंदों में अधक कर्म का एक समय काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि जो नोकर्म स्कंद जीव से निर्जीर्ण हो जाते हैं उनका औदयिक भाव को न छोड़कर उत्कृष्ट अवस्थान असंख्यात लोक प्रमाण काल तक पाया जाता है, ये उसका अर्थ है। वो हमने 95 पेज पर भी देखा था, 106 पर भी देखा था, यानी छूट गए जो परमाणु पूरे लोक में फैल जाते हैं और उसी रूप से रहने का उनका उत्कृष्ट काल है। तो ये एक जीव हो या असंख्यात हो या अनंत हो, ये कथन ऐसा ही होगा, अधक कर्म का काल एक समय से असंख्यात लोक प्रमाण तक। ये बात ख्याल में आई, जरा उसमें माइक में बोलना।
ये अधक कर्म का काल जो अधक कर्म का अधिकार जो बता रहे हैं,
हाँ अधक कर्म
तो
का
वो नीचे 22 नंबर का जो सूत्र है पेज नंबर 46
नंबर के पेज पर, हाँ,
उपद्रावन विद्रावन परितापन और आरंभ रूप से कार्य से निष्पन्न होता है, यानी यहाँ तो कह रहे किसी जीव को उपद्रव करना।
हाँ देखो, यानी अभी इसका अर्थ ज्यादा ख्याल में आता है कि उसके उपद्रव के निमित्त से जो अधक कर्म यानी जो निर्जरित हुआ है ऐसा लेना, जो स्कंद निर्जरित हो गए अंग छेदन के द्वारा जो निर्जरित हो गए,
हाँ
जैसे बाल काटे नखून काटे हाथ काटा तो वो तो उसका जो छेद किया है ना, अंग छेदन किया, संताप उत्पन्न करना परिदावन, यानी वो जो कोई औदारिक स्कंद किस रूप से को कह निकल सकते हैं, और प्राणियों के प्राणों का वियोग करना आरंभ कहता है, यानी प्राणी तो वहां से छूट गए फिर भी उसका औदारिक शरीर स्कंद तो पड़ा रहा उसमें, तो वो पड़ा रहा तो उसके जो परमाणु जो है वो कहाँ तक फैल सकते हैं, इसकी बात है। अभी उसको जला दिया तो उसका अन्य जो रूप से परिणमन हुआ, वो औदारिक शरीर रूप से नहीं रहा, परंतु ऐसा भी पड़ा रहा तो क्या होगा, उसका औदारिक शरीर रूप से रहा ना उसके, तो उसमें से परमाणु है अभी उसका कुछ भी हो सकता है, वो वहां पड़े रहे और उसमें से छूट कर कहीं पर लोक के अंत में कहीं पर भी चले जाएंगे, ये उसका अर्थ है। यानी वहां उसकी इतनी जो विशेषता ख्याल में नहीं आई थी, बाद में हमने 2-3 जगह उसको देखा ना, 95 पेज पर भी पढ़ा, 106 पर भी पढ़ा, नहीं 95 पर था, कहाँ थे? हाँ 95 नीचे के पैराग्राफ में, यानी वहाँ उसकी क्लैरिटी और बढ़ती है। 95, 106, 108, अभी आगे बढ़े कोई 108 में वो काल के बारे में भी उसका कथन और कर दिया। हाँ हाँ, अभी तो हम मार्गणाओं में काल देख रहे थे और तीरियंचों में देख रहे। आना 112 पेज पर। तो तीरियंच गति में प्रयोग कर्म और समवदान का अर्थ क्या है? एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा तो हमेशा रहेगा, एक जीव की अपेक्षा जब बात करते हैं तो एक जीव तीरियंच गति में कम से कम और अधिक से अधिक कितने काल तक रहता है उसकी बात है। तो कम से कम काल उसका एक लब्धि अपर्याप्त का भव, इसको क्षुद्र भव कहेंगे या क्षुल्लक भव ग्रहण कहेंगे, और मैक्सिमम असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अधकर्म का काल हमने देखा था एक समय से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण, और यही बात सभी मार्गणाओं में लागू होगी। यहां तक हमने पढ़ा, अब कहते क्रियाकर्म का कितना काल है। क्रियाकर्म का अर्थ है सम्यक दृष्टि जो है, सॉरी तीर्यंचों में सम्यक दर्शन कितने काल तक लगातार रह सकता है, ये उसका अर्थ है। तीर्यंच रहते हुए उसका क्रियाकर्म कितने काल तक रहेगा, यानी उसके तीर्यंच मरकर अगर अन्य भव में जाते तो देव में जाएगा सम्यक्त के साथ, तो तीर्यंच में ही रहा वो सम्यक्त के साथ, तो अधिक से अधिक कितना रहेगा बोलो आप। हाँ बोलो ना कितना होगा, तीन पल्ले। हाँ तो यहाँ क्या लिखा है देखो, क्रियाकर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, हमेशा तीर्यंचों में सम्यक दृष्टि रहेगी ही, यह है नाना जीवों की अपेक्षा काल, नाना ने अनेक जीव, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि सम्यक तो प्राप्त किया और फिर दोबारा पहले या तीसरे गुण स्थान में नीचे चला गया, तो उसको कहेंगे जघन्य काल अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल पूरा तीन पल्ले प्रमाण, पूरा तीन पल्ले इसलिए लिया है वो क्षायिक लेके वहां गया है, इसलिए वहां पहले ही समय से वो समय दृष्टि था, ये उसका अर्थ है। जब तीर्यंचनी की बात करेंगे तो तीर्यंचनी में पूरा तीन पल्ले नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें उत्पन्न होने के बाद वो वहां समय को प्राप्त करेगी, इसलिए कुछ कम नहीं, औपशमिक भी कर सकते हैं ना, क्षायिक वहां कोई अन्य गति में करता ही नहीं क्षायिक, और भूभूमि के मनुष्य भी क्षायिक उत्पन्न नहीं करेंगे, क्षायिक जो उत्पन्न होता है प्रारंभ होता है कर्म भूमि के मनुष्यों में ही होता है, वो भी केवली शुद्ध केवली के पादमूल में। तो यहाँ कहते हैं देखो, यहाँ तो सामान्य तीर्यंचों की बात हो रही है, तो पूरा तीन पल्ले है, क्योंकि उसका कारण बताते हैं, मनुष्य पर्याय में रहते हुए दान देने से या दान की अनुमोदना करने से तीर्यंचायु का बंध करके और इसके बाद क्षायिक समय दृष्टि होकर, देखो भोग भूमि का जो महत्व की यानी उसमें किस अपेक्षा से बताते हैं, तो कि दान दान के फल में वहां की भोग भूमि की आयु बनती है। जो देवकुरु या उत्तर कुरु में उत्पन्न होकर, ये उत्तम भोग भूमि के नाम है देवकुरु और उत्तर कुरु, और वहां तीन पल्ले काल तक क्रिया कर्म का पालन करके, करके शब्द डालो, पालन करके देवों में उत्पन्न होता है, क्योंकि भोग भूमि के समय दृष्टि नियम से स्वधर्म ईशान में चले जाते हैं। उस तीर्यंच के क्रियाकर्म का पूरा तीन पल्य काल उपलब्ध होता है। यहाँ तक समझ में आई बात? ये अब आगे बढ़ते हैं। जब हम
यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, हाँ, कि दान देने से तीर्यंचायु का बंध होगा,
नहीं नहीं, दान देने से भोग भूमि का बंध हुआ, परंतु वो दान देने के फल में मनुष्यायु का भी बंद हो सकता था, तीर्यंचायु का भी हो सकता था, परंतु उसमें उसके परिणाम वो मनुष्यायु जैसे इतने विशुद्ध नहीं रहा, थोड़ा संकलेश हुआ, तो तीर्यंचायु का बंद हुआ, यानी तीर्यंच गति तीर्यंचायु के बंद होने के परिणाम में उसने कुछ दान की अनुमोदना भी की है उस समय, तो उसके फलरूप वहां की उत्तम भोग भूमि की आयु बंधी। देखो अभी आयु बंद के परिणाम में तो कितनी वेरिएशंस होगी ना वहां पर, अब ये तो कोई देव की भी आयु बांध सकता है, कोई मनुष्य की, तीरंज की, नारके की। अभी उसके ऐसे परिणाम में भी वो दान के परिणाम है, उसके अनुमोदना के परिणाम है। ये आता है ना शास्त्र में कि तो चार वो तीरंज थे, उन्होंने अनुमोदन, मुनिराज को कोई आहार दे रहा था उन्होंने आदिनाथ के भाव में, तो वो भोग भूमि की आयु बांधी वहां पर उन्होंने। पंचेंद्रिय तीरंज, देखो ये भी आता है कि जो कुपात्र को दान देता है वो कुभोग भूमि की आयु बांधता है, ये भी आपने सुना होगा। वही कुभोग भूमि कहा मैंने, कुभोग भूमि नहीं मालूम, कुभोग भूमि ये लवण समुद्र में और वो कालोदक समुद्र में ऐसे कुछ द्वीप है 48 48, तो उनमें ऐसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो कोई एक पैर वाला है, कोई जैसे कान लंबे कान वाले है, किसी का मुंह जो है वो गधे जैसा है, किसी का सिंह जैसा है पूरा ऐसा मुंह। ये अलग अलग वो इससे तो अंग वाले जीव वहां उत्पन्न, कोई गूंगे है, कोई सिंह वाले है, ये सारे कुमानुष कहलाते हैं। तो कुमानुष जहाँ उत्पन्न होते हैं उसको कुभोग भूमि कहते हैं, यानी वो भोग भूमि, उनकी भी एक पल्ले की आयु होती है। और वहाँ फिर उनका जो रहना है, मिट्टी खाते हैं, कोई गुफाओं में रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें। तो ये सब क्यों? क्योंकि उन्होंने जो दान तो दिया, उन कुदान दिया यानी कुपात्र को दान दिया। हाँ, जो मुनि है, जो शिथिलाचारी है, अब उसको मुनि मानकर जो दान देते हैं, ऐसे फल में वहां जाना पड़ता है। यानी मुनिराजों को आहार देते तो मुनिराज जो भावलिंगी संत होते हैं, नग्न दिगंबर, तो उनके आहार के ये जो उत्कृष्ट पात्र कहलाते, पर इन्होंने मुनि मानकर खोटों को आहार दिया, तो ऐसे फल में वहां जाते हैं। उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। स्वयं जो मुनि भी है, यानी मुनि की हाँ जैन भूगोल में है, वो मुनि जैसा है नहीं है, पर स्वयं को मुनि मान रहे और मुनि होकर क्या करे, कोई रत्न की परीक्षा कर रहा है, कोई जैसे आहार के लिए जाता है उनके बच्चों की सिफारिश करेगा, इसको वो कहते हैं आमदनी, यानी उसके आहार के लिए ऐसी ऐसी बातें करता है, किसी का ज्योतिष बताएगा, किसी को रोगों की औषधि बताएगा, ये सब मुनि की मुनि योग्य व्यवहार नहीं है। या दान इकट्ठा करता है, मुनि होकर पैसे इकट्ठा करता है, ये सब के कारण वहां चला जाता है जी। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उसके अंदर, और ये आज की तारीख में नहीं लिखा है, त्रिलोकसार रचना में मूल त्रिलोक पन्नति और त्रिलोकसार में बातें लिखी है। जैन भूगोल में वहां कहां रेफरेंस दिया है, मूल गाथाएं दी है, ऐसा नहीं अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। जैन भूगोल के हमने शिविर की ना त्रिलोक रचना, तो उसमें सब कुभोग भूमि क्या होती है, वहां की क्या परिस्थिति होती है, जीव कैसे होते हैं और वो मरकर कहां जाते हैं, क्या वो सभी बातें वहां है। वहां कोई सम्यक तो भी नहीं प्राप्त करेगा।
उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया था?
हाँ, बहुत बहस हुई थी, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, क्या करें, क्योंकि सत्य बात सुहाती नहीं ना किसी को।
किसको
अभी क्या करें उसकी बात,
जो स्वयं मुनि नहीं है उनको।
अब मुनि मानकर जो अपने को बैठे है उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, उसमें उनके मुनियों की निंदा करते हैं। मुनियों की निंदा नहीं करते, हमने तो शास्त्र पढ़ के बताया और बिल्कुल पुस्तकों के नाम सहित रेफरेंस दिए है उसमें, और जो जो बोला है वो पुस्तक में लिखा है, ऐसा ही नहीं कि बाद में उसमें कुछ नई बात डाली हो। अभी वो किसी को नहीं सुहाई तो क्या करेंगे, यानी उनको मूल आचार्यों की बात नहीं सुहाती है, उसका अर्थ है ना ये। जिनेन्द्र भगवान की बात आचार्यों ने जो लिखी है, पूर्वाचार्यों ने, और वो कोई बताता है अपनी ओर से तो नहीं। विषय ही ऐसा है कि कुभोग भूमियों का वर्णन करना है तो किस परिणाम से वहां जाता है वो तो बताना ही पड़ेगा, तो वो किसी को नहीं सुहाया, जाहिर में निषेध कर दिया उन्होंने, तो हम क्या करें उसको। पंचेंद्रिय तीरियंच, पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त, और पंचेंद्रिय तीरियंच योगिनी जीवों में जब गतियों की अपेक्षा भेद करते हैं, गति मार्गणा में जब कहते हैं, तो हमने नरक गति में क्या देखा था, पहले सामान्य से बताया और फिर एक एक नरक में सात भेद करके बताए। तीरियंचों में कैसे भेद करना, एक सामान्य से तीरियंच उसमें सभी आ गए। अब पंचेंद्रिय तीरियंच कहते तो पंचेंद्रिय में संगी भी असंगी भी पर्याप्त भी अपर्याप्त भी सभी भेद उसमें आ गए। फिर पहला भेद है पंचेंद्रिय तीरियंच का, उसमें सब है पर्याप्त अपर्याप्त संगी असंगी सब। पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त कहने से वो अपर्याप्त उसमें नहीं आए, केवल पर्याप्त, पर वो संगी भी है और असंगी भी है। और पंचेंद्रिय तीरियंच योनिनी कहने से वो स्त्री वेद वाले लेना तीरियंच, उसमें पुरुष वेदी तीरियंच नहीं लेना। ये अलग से क्यों बताते हैं, क्योंकि इनमें कोई सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होगा। हमने देखा ना सम्यक दृष्टि स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होगा। अभी जो हमने देखा था दान के प्रभाव में कोई वहां भोगभूमि में उत्पन्न होता है सम्यक तो लेके, कौन सा क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य जिन्होंने सम्यक तो के पहले तीरियंच आयु बांधी थी, बाद में क्षायिक किया था, तो वो क्षायिक लेकर भोगभूमि में उत्पन्न होता है। तो पुरुष वेद में उत्पन्न हुआ तो पूरे तीन पल्ले की ऊंची है, पर कोई तो वहां पर जो स्त्री में उत्पन्न होने वाला है क्षायिक तो नहीं उत्पन्न होगा, यानी कोई सम्यक तो के साथ भोगभूमि की स्त्री नहीं होगा तीरियंच में भी, तो वो स्त्री तो वहां उत्पन्न हो गई। अभी वहां तो सारे गर्भज है, तो गर्भ में जो कुछ यथावेगे मिनिमम दो महीने का वहां उल्लेख आता है कहीं शास्त्र में, तो उसके बाद जन्म के यथायोग्य काल बाद वहां सम्यक तो प्राप्त करेंगे। इसलिए कुछ कम तीन पल्ले वहां की सम्यक तो में रहने का काल बताएंगे अभी। तो कहते पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तीरियंच योनिनी जीवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। अभी हम एक जीव की अपेक्षा कैसे सोचना, जब सामान्य से तीरियंच थे तो एक शूद्र भो लिया था, जब हम पंचेंद्रिय तीरियंच इतना ही कहेंगे तो उसमें भी पंचेंद्रियों का एक शूद्र भो ले सकते मिनिमम काल, और मैक्सिमम काल पंचेंद्रिय तीरियंचो इन जनरल ने संगी असंगी मिलकर मैक्सिमम कितना होता है, तो पूर्व कोटि पृथक्व प्लस तीन पल्य। उसका अर्थ क्या है, अभी स्त्री वेद में पुरुष वेद में नपुसक वेद में आठ आठ भव होते हैं पूर्व कोटि के, संगी के भी असंगी के भी, तो उसमें ये संगी के ये 8, 3, 24 और 24 48 भव हो गए, फिर बीच में एक अपर्याप्त का भव और फिर 48 भव एंड 96 भव हो सकते हैं। तो 96 में से अंतिम भव है वो तीन पल्ले का वहां भेजना उसको, तो 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले, इसको कहते हैं पृथक्त्व पूर्व कोटि और तीन पल्ले। पृथक्त्व में ये सब गिनती आती है उसकी, पृथक्त्व कहने से मनुष्यों में उसका पृथक्त्व के नंबर अलग है, तीरियंचों में उसका अलग है, पर्याप्त तीरियंचों में अलग है। यहाँ संगी असंगी है ना, मनुष्यों में 24 के बाद लेते हैं, यहाँ तो तीरियंचों में संगी भी है और असंगी भी है। हाँ असंगी के 24 बाद में अपर्याप्त। देखो एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त जो कहा है, देखो पंचेंद्रिय तीरियंच इन जनरल लिया तो अपर्याप्तों का क्षुद्रक भव लिया, और पर्याप्तों में अगर योनिने में जो है वो मिनिमम आयु वो क्षुद्र भव वाली लब्धि अपर्याप्त की नहीं उनकी थोड़ी बड़ी है तो उसको अंतर्मूर्त कहेंगे, इसलिए वहां और अंतर्मूर्त ऐसे दो विकल्प बताए, यानी पर्याप्तों के लिए और योनिनी के लिए। तथा उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, तीनों को मिलकर एक सामान्य कथन क्या लिया, पूर्व कोटि पृथक्त्व और तीन पल्य। अब पंचेंद्रिय तीरियंच इतना ही कहेंगे तो हमने अभी पूर्व कोटि पृथक्त्व की संख्या कितनी देखी थी, 95 पूर्व कोटि, पहले 48 संगी असंगी के, फिर अपर्याप्त का भव और फिर 48 भव।
यहाँ बात ऐसी है कि पृथक्त्व का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग किया जाता है, कहीं पृथक्त्व का अर्थ 6 से लेके 9 तक,
3 से 9
तक की बात है, और यहाँ पर मनुष्य पर्याय की बात ली है, लगातार मनुष्य पर्याय मिले तो 48 भव की बात की अभी आपके सामने, और जो तीरंज में से तीरंज लेकिन कौन सा पंचेंद्रिय तीरंज उसके 96 भव हो सकते हैं, उसको भी पृथक्त्व कहा, यानी पृथक्त्व का अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग अपेक्षा से कुछ ऐसा समझना।
तो पृथक्त्व कोटि जब पंचेंद्रिय तिर्यंच कहेंगे तो 95 पूर्व कोटि होगी। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त कहने से बीच में अपर्याप्त का भाव नहीं लेंगे, केवल संगी असंगी के पर्याप्तों के भाव कहेंगे, 24 और 24, तो 48 में से 47 पूर्व कोटि और 3 पल्य करेंगे। ये पंचेंद्रिय तिर्यंच पर। और योनिनी में संगी के 8 और असंगी के 8 स्त्री वेदिकों के, तो 8 और 8 16 होते, उसमें से 15 पूर्व कोटि और 3 पल्य। फिर से ये पृथक्त्व का अर्थ तीनों के लिए सामान्य कथन क्या है, पृथक्त्व पूर्व कोटि पृथक्त्व। अभी हमारे पास 3 पंचेंद्रिय है, कौन से पंचेंद्रिय तिर्यंच इन जनरल, तो उसमें टोटल भव होते 96, उसमें से अंतिम भव रखना है 3 पल्य का, तो 95 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्य। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में, बीच में अपर्याप्त का भव छोड़ेंगे तो असंगी के 24 और संगी के 24 48 होते हैं, 48 में अंतिम भव 3 पल्य का, तो 47 पूर्व कोटि और 3 पल्य। अब योनिमति कहो या योनिनी तिर्यंच है स्त्री वेदी वाले, तो स्त्री वेदी में लगातार 8-8 ही हो सकते हैं, असंगी के 8 और संगी तिर्यंच के 8, तो 8-8 16 होते हैं, 16 में से अंतिम 3 पल्ले का रखना है, तो 15 पूर्व कोटि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेना है। इतनी बड़ी आयु सबको नहीं मिलेगी परंतु मिल सकती है, ये उसका अर्थ है उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य। अब आगे देखते हैं, क्रिया कर्म का काल सामान्य तिर्यंचों के समान है। देखो सामान्य तिर्यंचों के समान है का अर्थ क्या है, क्रिया कर्म है, अभी वो समय दृष्टि कितने काल तक लगातार रह सकता है, तो तिर्यंच का एक ही भव लेना, तो 3 पल्य पूरा लिया जो शाइक के साथ वहां उत्पन्न होता है। तो ये बात पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी घटित होगी, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में भी वही अपेक्षा लगती है, परंतु तिर्यंच योनिनी में वो कुछ कम करना पड़ेगा क्योंकि सम्यक्त्व के साथ कोई उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कहेंगे इतनी विशेषता है। ये जो डिफरेंस है वो अब बता रहे कि योनिनियों में क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल 2 माह और मुहूर्त पृथक्त्व कम 3 पल्य है। इसका अर्थ क्या है, 2 माह गर्भ का है और मुहूर्त पृथक्त्व यानी कुछ मुहूर्त लिया, कुछ मुहूर्त क्यों लिया, कुछ दिन भी ले सकते उसमें, क्योंकि हमने ये भी देखा है उत्तम भोग भूमि में जैसे मनुष्यों के लिए और तिर्यंचों के लिए वो क्या होता है, तो वो हमने देखा ना 7 दिन पहले अंगूठा चूसते हैं, 7 दिन ये होता है, तो 7 दिन तो जघन्य भोग भूमि का काल है, 5 दिन तो मध्यम भोग भूमि का काल है और 3 दिन तो उत्कृष्ट भोग भूमि का, यानी 3-3-3 दिन के 3-3-3 के से 7 हफ्ते हो जाते, 21 दिन हो जाते, 21 दिन हो जाते जगन्य के लिए, 7-7 7-7 7 × 7, मध्यम के लिए 5 × 7, उत्कृष्ट लेके 3 × 7, तो एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 30 मुहूर्त होते हैं ना, 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, तो कहते कि मुहूर्त पृथक्त्व उसमें आ गए, यानी ये जो कुछ दिन है, कुछ दिन वो कुछ मुहूर्त भी कहेंगे उसको, ये यथा योग्य जो कुछ है मुहूर्त पृथक्त्व कम 3 पल्ले, यानी उतने उसके बाद उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, क्योंकि सम्यक दृष्टियों की योनिनियों में उत्पत्ति नहीं होती, यानी स्त्री वेदी में उत्पत्ति नहीं होती, ये नियम है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव उनमें उत्पन्न होते हैं उनके भी जब तक मुहूर्त पृथक्त्व अधिक 2 माह काल नहीं निकल जाता तब तक सम्यक्त्व का ग्रहण नहीं होता। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के यानी लब्धि अपर्याप्त जीव है, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, हमेशा इन पर्याय में कोई ना कोई जीव रहेगा ही रहेगा, इसलिए सर्वकाल। एक समवदान करना हर जगह धान हुआ है ना, वो दान। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, यानी एक भव एक मिनिमम भव और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, इसका अर्थ होता है लगातार अपर्याप्त 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 रहा उसको कहेंगे अंतर्मूर्त। यानी पंचेंद्र तिर्यंच अपर, ये तिर्यंचों की बात है, संगी के आठ और असंगी के आठ आठ भव लगातार हो सकते हैं अपर्याप्तों के भी, तो उसका मिलकर भी काल अंतर्मूर्त होता है। यानी बाद में वो तिर्यंच अपर्याप्त में से अन्य पर्याय धारण करेगा ही करेगा, पर्याप्त में जाएगा तिर्यंचों में या मनुष्यों में जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आई तिर्यंचों की। अब हम मनुष्य गति की बात देखते हैं। मनुष्य गति में मनुष्य त्रिक का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान है। अब मनुष्य लब्धि अपर्याप्त को छोड़ा, इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान क्या कहेंगे हम, मनुष्य त्रिक का अर्थ होता है पहले में पहले सामान्य मनुष्य, जैसे वहां सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच ले अपर्याप्तों को लेते हुए, फिर है मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं, ये जो तीन भेद है तो उसका भंग पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान है। यानी उसमें जो समवदान है और जो प्रयोग कर्म है वो हमने देखा था ना, वो कितना काल होगा उसका, जघन्य क्षुद्र भव, मनुष्य सामान्य मनुष्यों में जघन्य काल क्षुद्र भव, और उत्कृष्ट काल कितना होगा मनुष्यों में रहने का, तिर्यंचों में तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन लिखा, पर मनुष्यों में लगातार रहने का काल पूर्व कोटि पृथक्त्व और तीन पल्ले है। इसमें भी मनुष्यों के पर्याप्तों के, स्त्री के पुरुष के और नपुसक के आठ आठ भव हो गए, फिर एक अपर्याप्त का होगा और फिर अतिरिक्त 24 हो गए, 24 और 24 48 पूर्व कोटि के बदले लास्ट में तीन पल्ले वाला रखना, तो 47 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, ये उसका अर्थ होता है। पूर्व कोटि पृथक है ना, वो कथन वैसा होगा। देखो पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक कहाँ वर्णन है, कहाँ लिखा, अभी हम आगे नहीं गए हैं, मैं केवल पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान है इतना ही कथन है। यानी सामान्य पंचेंद्रिय के लिए पूर्व कोटि पृथक कथन तो सबके लिए, क्योंकि वो तो जनरल टर्मिनोलॉजी है पूर्व कोटि पृथक, उसकी अपनी सामान्य के लिए भी हुई पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्य मनुष्य, हाँ वो काल है सामान्य लेंगे तो 47 पूर्व कोटि और तीन पल्य। अब मनुष्य पर्याप्तों के लिए, अभी अपर्याप्तों का लेना नहीं बीच में, तो आंतरिक 24 ही हो जाएंगे, तो 24 में से 24वां भव तो तीन पल्ले का लेना है, तो 23 पूर्व कोटि और तीन पल्ले। और मनुष्यनी के लिए केवल मनुष्यनी के आठ भव में से सात पूर्व कोटि और तीन पल्ले। ये समझ में आई बात, इसलिए कहा हम पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान है। क्या समानता है, पूर्व कोटि पृथक तो ये टर्मिनोलॉजी समान है, उसकी वैल्यू अलग अलग है। यहां तक बात आई है, ये किसकी है, प्रयोग कर्म और समवदान की। अब देखें इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा सदाकाल ये तो वहां पर भी लागू होगा, परंतु एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। अभी एक समय कैसे घटित करेंगे, देखो मनुष्यों में किसकी बात, क्रिया कर्म की, क्रिया कर्म कहाँ तक होता है, सात्विक गुण स्थान तक, तो कोई उपशम श्रेणी चढ़ा और आठवें से सातवें में आया तो क्रिया कर्म का एक समय हुआ और मरकर देव में चला गया, तो मनुष्य के रहते हुए क्रिया कर्म एक समय घटित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के गुण स्थानों में क्रिया कर्म नहीं था, नीचे में लौट कर आए तो क्रियाकर्म शुरू हुआ, इसलिए क्या कहते हैं जघन्य काल एक समय है। तिर्यंचों में जघन्य काल कितना था याद है, अंतर्मूर्त कैसा कि पहले या तीसरे से गए चौथे में सम्यक तो प्राप्त किया, एक अंतर्मूर्त रहा वापस मिथ्यात्व में गया, तो वहां एक अंतर्मूर्त लिया था और यहाँ एक समय लिया था। किस अपेक्षा से? ऊपर के गुणस्थानों में से नीचे लौटे सातवें में और एक समय में मर गए। तो कहते उतरने वाले किसी अपूर्वकरण उपशामक जीव का यानी उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीव का अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होकर क्रियाकर्म रूप से परिणमन करके दूसरे समय में ही मरण देखा जाता है। वो समय दृष्टि यानी वो तो नीचे के गुणस्थान में आया तो वो क्रियाकर्म वाला हो गया, वो बाहर क्या कर रहा है उसकी बात नहीं यहाँ पर। अब उत्कृष्ट काल किसका? क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल। आपको ऐसा सोचना है कि वो मनुष्य 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 तो रहना चाहिए और क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल भी रहना चाहिए। तो कैसा आप सोच सकते हैं दक्षाबेन कैसा? क्योंकि देखो तीरेंचो में कैसा लिया, हमने तीन पल्ले पूरे लिए थे। तो तीन पल्ले पूरे कौन से थे? जो जिस मनुष्य क्षायिक ने तीरेंच में जन्म लिया था। अब मनुष्य में कैसा घटित करेंगे मयंक भाई? मनुष्य ने मनुष्य में से मनुष्य होना है सम्य दृष्टि, क्या करेंगे फिर उसको? क्षायिक करके वहां पर भी मनुष्य रहा और भोगभूमि का भी मनुष्य हुआ, तो क्षायिक अर्लिएस्ट कब प्राप्त कर सकते हैं? आठवें करते पर आठवें साल में अगर क्षायिक किया तो उसको देवायु बंधेगी, वो भोगभूमि की मनुष्यायु नहीं बांधेगी। तो पहले मनुष्यायु बांध ली तो मनुष्यायु अर्लिएस्ट कभी बांधेगा? पूर्व कोटि के वन थर्ड बाकी है तब, यानी वन थर्ड पूर्व कोटि पहले उसने मनुष्यायु बांधी और बाद में उसने सम्यक तो प्राप्त किया एक अंतर्मूर्ति में और क्षायिक हो गया। यहां तक समझ में आई बात? तो यहां पर भी सम्यक दृष्टि वन थर्ड पूर्व कोटि और वहां पर भी क्षायिक के साथ तीन पल्ले, तो तीन पल्ले प्लस पूर्व कोटि पृथक का वन थर्ड, ख्याल में आई इतनी बात? अब यहां पढ़ेंगे देखो। उत्कृष्ट काल किसका? क्रिया कर्म का। पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक तीन पल्ले हैं, क्योंकि 28 कर्म की सत्ता वाला जो मनुष्य, 28 कर्म की सत्ता वाला क्यों लिया? क्योंकि शादी मिथ्या दृष्टि लिया, क्यों? वो तो बाद में इमीडिएट उसने समय को प्राप्त किया ऐसा जीव लिया कि 28 कर्म की सत्ता वाला जो मनुष्य आयु में पूर्व कोटि का त्रिभाग शेष रहने पर भूभूमि संबंधी मनुष्यायु का बंध करने के बाद अंतर्मूर्त काल द्वारा सम्यक्त्व को ग्रहण करे, क्योंकि एक अंतर्मूर्त में उसने सम्यक्त्व को ग्रहण किया और तदनंतर क्षायिक सम्यक्त्व को प्रारंभ कर, यानी वो ऑर्डिनरी सम्यक दृष्टि हुआ वो वेदक वाला तो भी क्रियाकर्म तो चालू ही हो गया, परंतु भोगभूमि में सम्यक्त्व लेकर जाने के लिए क्षायिक की कंडीशन है, तो फिर उसने क्षायिक भी प्राप्त किया। तो क्षायिक सम्यक्त्व को प्रारंभ कर अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि के त्रिभाग काल तक, त्रिभाग यानी वन थर्ड, क्रिया कर्म का पालन करता है, सम्यक् दृष्टि रहता है, पश्चात मर कर देवकुरु या उत्तर कुरु में उत्पन्न होकर, यानी वो उत्तम भोगभूमि में जन्म लिया, उत्तम भोगभूमि के नाम है। अभी भी बात आई थी ना तीरियंचों के बारे में, उत्तर कुरु ने उत्तर की ओर जो मेरु सुमेरु के उत्तर की ओर जो है वो उत्तर कुरु कहते हैं और दक्षिण की ओर है उसको देव कुरु कहते हैं। वो भूगोल पुस्तक में उसके चार्ट देख लेना आप तो ख्याल में। हाँ, वो पूरी एरिया जो है विदेह क्षेत्र, जहाँ विदेह में तीर्थंकर होते वो क्षेत्र अलग है, परंतु मेरु की दोनों ओर है, ये गजदंड के अंदर वो क्षेत्र होता है। हाँ देखो, पश्चात मरकर उत्तर कुरु देव कुरु उत्तर कुरु में उत्पन्न होकर और वहां तीन पल्ले प्रमाण काल तक जीवित रहकर देवों में उत्पन्न होता है, वहां की मैक्सिमम आयु लेकर गया है और फिर वहां से देव में चला जाता है। उसके क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त न्यून, न्यून यानी कम पूर्व कोटि का त्रिभाग यानी वन थर पूर्व कोटि माइनस अंतर्मूर्त, क्योंकि पहले मनुष्य बांधी अंतर्मूर्त के बाद सम्यक्त्व प्राप्त किया तब क्रियाकर्म शुरू हुआ, तो अंतर्मूर्त न्यून पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक तीन पल्ले प्रमाण उपलब्ध होता है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त कों के भी यानी सामान्य मनुष्यों के भी लिए ये कथन लागू होगा और पर्याप्त मनुष्यों के लिए। पर्याप्त क्यों? क्योंकि वो तो पुरुष वेद में ही जन्मने वाला है, इसलिए उसको पर्याप्त मनुष्यों में भी वो बात लागू होगी और यहाँ पर भी उस पुरुष वेदी था। तो मनुष्य पर्याप्तकों के भी क्रियाकर्म का काल कहना चाहिए। मनुष्यनियों में क्रियाकर्म का काल इसी प्रकार ही है, इतनी विशेषता है। डिफरेंस क्या है? अब वो सम्यक्त के साथ उत्पन्न नहीं होता कोई स्त्री में। स्त्रियों को यहाँ कर्मभूमि के स्त्रियों को भी सम्यक्त तो प्राप्त होता है, परंतु यहाँ की यानी 8 साल के बाद प्राप्त होगा और पूर्व कोटि की भी आयु लेते हैं तो इतनी कम होगी। और वहाँ भोगभूमि में जाने के बाद समय तो करेगा तो कुछ कम तीन पल्ले होगा। इसलिए कहते इतनी विशेषता है, इनमें क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल 9 माह यानी वो गर्भावस्था लिया और 49 दिन कम तीन पल्ले है। यह 49 दिन पूरे लिए है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तीन पल्ले तो उत्तम भोगभूमि की बात है, पर ये 49 दिन ये सामान्य कथन है और विशेष कथन ले तो 5 दिन और 3 दिन का वो तो 21 दिन हो जाता है। पर सर्वत्र 49 दिन के बाद सामान्य से करने की पद्धति है और कहीं विशेष और स्पेसिफिक कथन है तो उत्तम भोगभूमि में वो 3-3 दिन का जो एक एक हफ्ते में तीन जो होता था ना वो 3-3 दिन की बात है, पर सामान्य से कथन करने की पद्धति 49 दिन। यहाँ कर्मभूमि क्या 8 वर्ष लेते हैं गर्भ का काल, तो वहाँ 9 महीने भी लेते हैं और कहीं कहीं 7 महीने भी लेते, क्योंकि जल्दी उसको जिसको हम कहें ना प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई उसका भी कहते हैं यहाँ पर। परंतु तो गर्भ यानी जन्म के बाद, जन्म कौन सा? गर्भ से निकलने का वो जन्म, तो वहाँ से 8 वर्ष के बाद उसको सम्यक तो हो सकता है, पर यहाँ भोग भूमियों में 49 दिन के बाद, क्योंकि वहां तो होता है कि 7 दिन तक तो अंगूठा चूसता है, फिर वो पलटता है, फिर रेंगता है, फिर खड़ा होता है, वो 7-7 दिन में उसकी डेवलपमेंट होती है और पूरे 49 डेज में पूरा युवान उत्पन्न होता है भोगभूमि का, इतनी उसकी फास्ट डेवलपमेंट है। गर्भ का काल तो यहाँ का भी 9 महीना और वहां का भी 9 महीना है, युवा हो जाते हैं। हाँ देखो 49 दिन। इरियापत कर्म मनुष्यों में, इरियापत कर्म कब कब होता है? हाँ ब्रह्मा देखो 11वें वाले को अंतर्मुहूर्त रहेगा तो मिनिमम काल उसका कितना रहेगा इरियापत का? एक समय, क्योंकि 11वें में मरण की अपेक्षा है, एक बात। और उसका उत्कृष्ट काल कितना होगा? 12वें का अंतर्मुहूर्त और 13वें का काल, कितना? कुछ कम पूर्व कोटि मैक्सिमम, किसी 8 साल के बाद किसी ने केवली। हाँ तो देखो क्या कहते हैं, इरियापत कर्म और तप कर्म का काल नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा ओघ के समान है, यानी नाना जीव में हमेशा होगा क्योंकि 13वां गुणस्थान हमेशा होगा। तप कर्म तो मुनियों के भी होता है, वो तो हमेशा होगा ही होगा, तो नाना जीव का तो हमेशा रहेगा। अब एक जीव की अपेक्षा ओघ के समान जो लिखा है, ओघ में क्या लिखा था? मिनिमम एक समय और मैक्सिमम कुछ कम पूर्व कोटि, वो कैसा? जिसने 8 साल के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया है उसकी अपेक्षा से। मनुष्य अपर्याप्तकों में, तो ये तो मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीय की बात हो गई। अब कहते हैं मनुष्य अपर्याप्तकों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, कितना हुआ, कितना काल है? तो अपर्याप्तों में रहने का काल कितना है वो तो पल्ले का असंख्यात भाग आपने नाना जीवों के बताए, एक जीव की एक क्षुद्र भाव या अंतर्मूर्त। नाना जीवों की अपेक्षा हमने याद किया था ये सांतर मार्गणा है, ऐसा का हो सकता है कि एक भी जीव इसमें न हो, पर कोई जीव आता है तो एक भव तो करके जाएगा ना, तो जब तक एक एक जीव ने आया वो उसका अपना अंतर्मुख छोटा भव किया वो चला गया, बाय दैट टाइम दूसरा आया, बाय दैट टाइम तीसरा आया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वहां कोई आता रहा तो लगातार वो चलता रहे तो कितने काल तक चलेगा नाना जीवों की अपेक्षा, तो कहते पल्ल्य का संख्या तो बाद में उसमें अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी बाद में उसमें एक भी जीव न हो ये बात बनेगी। यही कहते यहाँ पर, नाना जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, यानी अनेक जीवों ने एक साथ जन्म लिया और एक क्षुद्र भव करके वो मरण करके चले गए, और उत्कृष्ट काल पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण। ये कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई कोई आता रहा, तो वो असंख्यात काल है, बहुत बड़ा पल्ल का असंख्यात विभाग, बहुत बड़ा काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, अभी एक जीव मनुष्य अपर्याप्तों में जन्मा, एक ही भव किया तो उसका एक क्षुद्रक भव, जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि लगातार मनुष्य पर्याप्तों के भव कितने होते, तो आठ ही होते हैं, तो आठों का मिलकर काल भी अंतर्मूर्त ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब हम देवगति में देखेंगे, पहले में पहले मुझे बताओ देवगति में कौन कौन से कर्म होंगे। हाँ ब्रह्मा, प्रयोग कर्म होगा, समवदान होगा, क्रिया कर्म होगा, और बाकी कुछ नहीं होगा। अभी मनुष्यों में अधक कर्म का काल कितना है? नाना जीव की अपेक्षा तो सर्वदा है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, लक्ष्मी याद है? एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात लोग, हमने देखा था अधक कर्म के लिए सभी मार्गणाओं में काल क्या है, यानी वो जो औदारिक शरीर रूप से वो स्कंध रहे, औदारिक शरीर का कोई पार्ट टूट गया तो खिर गया, जो हर समय निर्जरित हो रहे, तो उसमें से उसी रूप से रहने वाले कुछ स्कंध है, वो असंख्यात लोग प्रमाण काल तक रह सकते हैं, ये कहना है। अभी आगे देवगति में देवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? उन्होंने पहले बता दिया सभी मार्गणाओं में उसका काल ऐसा है। देखो देखो, आप आने से पहले शायद हो गई थी बात, पेज नंबर तिरंज गति में 112 में, तिरंज में चौथी लाइन देखो, एक जीव की अपेक्षा वो अधक कर्म का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार सभी मार्गणाओं में, सभी मार्गणाओं ने जहां जहां अधक कर्म एप्लीकेबल है वहां, वो नारकी देवों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर जहां जिस मार्गणा में एप्लीकेबल है वहां यही बात लागू होगी, इसलिए वो हर बार उसको नहीं कहेंगे, एक बार कह दिया ना सभी मार्गणाओं में, तो ये हमको जानना है कि उसका क्या है, एक समय से असंख्यात लोग। अब देवगति में देवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? वो हर जगह समवदान करना है, नाना जीवन की अपेक्षा सब काल है, क्योंकि देव हमेशा ही बने रहेंगे और उनके प्रयोग और समवदान चलेगा ही चलेगा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 10,000 वर्ष, ये देवों की जघन्य आयु लिया, और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, जो सर्वार्थ सिद्धि की आयु लिए। ये इन जनरल कथन चल रहे हैं ना देवों का, जब देवों के भेद करके कथन करेंगे तो वहां की आयु बताएंगे, यहाँ तो इन जनरल बात है, सभी देवों को इंक्लूड करके बात है। इसी प्रकार क्रिया कर्म का भी काल है, इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है। क्या कहा? प्रयोग कर्म और समवदान में जघन्य आयु लिया तो 10,000 वर्ष, क्रिया कर्म में सम्यक्त्व में रहने का जघन्य काल लिया, तो कोई मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करता है, अंतर्मूर्त में वापस मिथ्यात्व में जाता है, तो वह अंतर्मूर्त हुआ। और उत्कृष्ट काल कितना होगा वहां पर? 33 सागर, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ ही जन्मे हुए हैं और 33 सागर तक वहां रहते हैं। योग है ना जघन्य काल अंतर्मुख। अभी देवों के भेदों की चर्चा करेंगे। भवनवासी वानवंतर और ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, क्योंकि हमेशा उस पर्याय में जीव रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्रम से, देखो क्रम से किसकी किसकी बात देखी थी, भवनवासी वानवंतर ज्योतिषी से लेकर ऊपर, क्योंकि थे 10,000 वर्ष भवनवासी के, 10,000 वर्ष वानवंतर के, पल्ल्योपम का आठवां भाग किसका है, ये ज्योतिषी देवों का। ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु पल्ल्य के आठवें भाग प्रमाण है। पहले दूसरे स्वर्गों की जघन्य आयु पल्ल्य के असंख्यातवें भाग अधिक एक पल्ल्य, यानी पल्ल्य प्लस पल्ल्य का असंख्यातवा भाग। तीसरे चौथे स्वर्ग में सनत कुमार महेंद्र में एक समय अधिक दो सागर, वहां की जघन्य आयु, ये सबकी जघन्य आयु गिना रहे। पांचवे छठे समय स्वर्गों में एक समय अधिक सात सागर, सातवें आठवें स्वर्ग में एक समय अधिक दस सागर। जो नीचे जो दस सागर है तो ऊपर एक समय अधिक होता है। जैसे छठे स्वर्ग की जगह उत्कृष्ट आयु दस सागर है, तो सातवें आठवें की जघन्य आयु दस सागर और एक समय है। नौवें दसवें की एक समय अधिक चौदह सागर, ग्यारहवें बारहवें की एक समय अधिक सोलह सागर, तेरहवें चौदहवें आनत प्राणत है ना, एक समय अधिक अठारह सागर, क्योंकि सहस्रार की उत्कृष्ट जो है वो अठारह सागर है, बंदी हुई है। पंद्रह सोलह स्वर्ग की एक समय अधिक बीस सागर, फिर एक समय अधिक बाईस सागर, किसकी, ग्रहवेयकों की मिनिमम आयु बाईस सागर प्लस एक समय, यानी वो नीचे के ग्रहवेयक की उत्कृष्ट आयु तेईस सागर होगी। एक 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 सागर बढ़ते हुए 23, 24, 25, 26, 31 सागर तक जाएंगे, पर वो तो उसकी उत्कृष्ट आयु है, हम मिनिमम गिन रहे हैं, तो मिनिमम 22 सागर प्लस एक समय, फिर एक समय अधिक 23 सागर, यानी वो एक समय अधिक 22 सागर नीचे के ग्रहवेग के, फिर दूसरे ग्रहवेग की एक समय अधिक 23 सागर, ग्रहवेग नंबर तीन की एक समय अधिक 24 सागर, चौथे ग्रहवेग की एक समय अधिक 25 सागर, पांचवे ग्रहवेग की एक समय अधिक 26 सागर, छठे ग्रहवेग की एक समय अधिक 27 सागर, सातवें ग्रहवेग की एक समय अधिक 28 सागर, आठवें ग्रहवेग की एक समय अधिक 29 सागर और नौवें ग्रहवेग की एक समय अधिक 30 सागर, क्योंकि नौवें की उत्कृष्ट आयु 31 सागर है ना, ये हम सबकी जघन्य आयु गिन रहे हैं। एक एक समय के डिफरेंस से सब आयु के विकल्प हो गए। अब अनुदिशों में एक समय अधिक 31 सागर, यानी वहां 31 सागर प्लस एक समय से लेकर 32 सागर तक उनकी आयु होगी अनुदिशों की। और अनुत्तरों में, अनुत्तर अंतिम जो पांच विमान है ना, नाम मालूम है उसके, जयंत वैजयंत, हाँ विजय वैजयंत जयंत वो है ना, और अपराजित गोवर्धन वहां नहीं आता, एक है हाँ सर्वार सिद्धि तो लास्ट में है। देखो ये हो गया ना, वहां अनुत्तरों में एक समय अधिक 32 सागर से लेकर वो 33 सागर तक है, ये सब हमने वहां की जघन्य आयु गिन दी। हाँ नव अनुदिश की पहले बता चुके, एक समय अधिक 31 सागर, और अनुत्तरों में एक समय अधिक 32 सागर। अनुत्तर इन जनरल कही, सर्वार सिद्धि में केवल 33 सागर ही होती है, वहां मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता है। अब उत्कृष्ट काल है, उत्कृष्ट आयु उस पर्याय की, जो अभी हमने अलग अलग विकल्प देखे ना, वो उनकी जघन्य आयु बताई थी, अब उन्हीं की उत्कृष्ट आयु 1.5 सागर वो भवनवासी की, जहाँ हमने 10,000 वर्ष मिनिमम देखी थी, यहाँ 150 सागर है। वो असुर कुमारों में होती नहीं इतनी, व्यंतरों में साधिक एक पल्य, ये हुआ है एक पल्य। ज्योतिषी में भी साधिक एक पल्य। अब सौधर्म ईशान में अंतर्मूर्त कम 250 सागर। देखो ये कैसा गिना, क्योंकि हमने तो तीसरे चौथे स्वर्ग की जघन्य आयु 2 सागर और 1 समय देखी थी, और यहाँ की उत्कृष्ट आयु 2 सागर होनी चाहिए थी। वो बंधने वाली 2 सागर होती है, पर ये घातायुष्क की अपेक्षा, और वो भी घातायुष्क सम्य दृष्टि ने किया है। सम्य दृष्टि जब घातायुष्क करते हैं, उन्होंने ऊपर के स्वर्गों की अधिक आयु बांधी है, मान लेते 7 सागर की आयु बांधी है, सम्य दृष्टि है, परंतु उसके परिणाम ऐसे कुछ हो गए कि नीचे के स्वर्गों की वो हो गई आयु, तो उसका घात हुआ आयु का, तो घात होकर कितना होगा, वो 2 सागर में 0.5 सागर ज्यादा हो गया, पूरा 0.5 सागर नहीं, अंतर्मूर्त कम 0.5 सागर ज्यादा हुआ। ये 2 सागर नीचे की है, 0.5 सागर ज्यादा 2.5 सागर हुआ, और उसमें अंतर्मूर्त कम, इसलिए कहते अंतर्मूर्त कम 0.5 सागर। ये सौधर्म ईशान के लिए हुआ। अंतर्मूर्त कम 7.5 सागर, वो साढ़ हुआ 7.5 सागर तीसरे चौथे के लिए। अंतर्मूर्त कम 10.5 सागर पांचवे छठे के लिए। अंतर्मूर्त कम 14.5 सागर सातवें आठवें के लिए। अंतर्मूर्त कम 16.5 सागर नौवें दसवें के लिए। अंतर्मूर्त कम 18.5 सागर 11वें 12वें, जिसको हम सहस्रार कहते हैं, शतार सहस्रार। फिर संपूर्ण 20 सागर, अभी उसके ऊपर घातायुष्क नहीं होते, पूर्ण 20 सागर, 22 सागर, फिर 23 सागर एक एक ग्रेवेक में, 24 सागर, 25 सागर, 26 सागर, 27 सागर, 28 सागर, 29 सागर, 30 सागर और 31 सागर। इन 9वें ग्रेवेक में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। अनुदिशों में उत्कृष्ट आयु 32 सागर और अनुत्तरों में 33 सागर, जो सर्वा सिद्धि में होती है। इसलिए उन्होंने सब देवों के अलग अलग भेद करके वहाँ की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बताई है, और वही उनके प्रयोग और संवदान कर्म का काल होगा एक जीव की अपेक्षा। आगे बढ़े अभी। अब कहते भवनवासियों से लेकर उपरिम ग्रेविक तक के देवों में क्रिया कर्म का कितना काल है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं पूछा क्रिया कर्म का काल, वहां तो सारे समय दृष्टि है। 9वें ग्रह के ऊपर का अर्थ है अनुदिश और अनुत्तर, सारे समय दृष्टि है, क्योंकि मुनिराज ही वहां उत्पन्न होते हैं ना, भावलिंगी संत ही उत्पन्न हो गए, और वहां जन्म से सारे समय दृष्टि है, और वो कभी मिथ्यात्व में जाते भी नहीं है। पर मिथ्यात्व और सम्यक ऐसे या चारों ही गुणस्थान कहाँ तक होते, तो 9वें ग्रह तक पाए जाते हैं, तो वहां क्रिया कर्म का काल है, नहीं सम्यक्त्व का काल कितना होगा ये पूछ रहे। तो भवनवासी में उनकी जो पूरी आयु है उतना तो नहीं होगा, क्योंकि उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त के बाद वो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने वहां की जो जो आयु देखी है जघन्य में, तो अंतर्मूर्त कह देना, और उत्कृष्ट में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों के लिए कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति, क्योंकि पूर्ण यानी पर्याप्त होने के एक अंतर्मूर्त के पश्चात वो सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। अभी वो बताएंगे स्वयं। नाना जीवन की अपेक्षा सब काल है, यानी भवनवासियों में भी हमेशा सम्यक दृष्टि कोई ना कोई पाए जाएंगे, कोई ना कोई क्या असंख्यात हो गए वहां पर भी, परंतु वो सब वहां जाने के पश्चात सम्यक तो प्राप्त करने वाले हैं। सम्यक तो लेकर इनमें कोई उत्पन्न नहीं होता। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी मिथ्या तो में से सम्यक तो हुआ, फिर दोबारा मिथ्या दृष्टि हुआ। और उत्कृष्ट काल भवनत्रिक में क्रम से 150 सागर। देखो साधिक एक पल्य और साधिक एक पल्य, वो साधिक में से वो उसका अंतर्मूर्त जो है ना पर्याप्त होने का, वो माइनस करना तो भी साधिक रह जाएगा। उनसे हीन है वो बताएंगे। डेढ़ सागर उसकी आयु है, उनमें से शुरुआत के तीन अंतर्मूर्त घटाएंगे बाद में। क्या प्रश्न है आपका? देखी ना हमने डेढ़ सागर, इसी पेज पर तीसरी लाइन में, नहीं दूसरी लाइन में, उत्कृष्ट काल डेढ़ सागर भवनवासी का था। ये असुर कुमारों के, असुर कुमारों की बड़ी होती है ना आयु, उसकी अपेक्षा से लिए। देखो अभी ये जो सबकी जो उत्कृष्ट आयु देखी ना, उसमें से तीन अंतर्मूर्त कम करने की बात करेंगे। पहले में पहले उत्कृष्ट बात, उत्कृष्ट आयु बता रहे भवनत्रिक में क्रम से, यानी भवनवासी के लिए डेढ़ सागर, व्यंतर के लिए साधिक एक पल्य और ज्योतिषी के लिए साधिक एक पल्य, उत्कृष्ट आयु लेना है। ये तीनों ही काल अभी किससे कम करना, ये काल में से छह पर्याप्तियों की समाप्ति का एक अंतर्मूर्त, विश्राम का दूसरा अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अंतर्मूर्त छोड़ के बाद में विशुद्धि की बढ़ना होता है, और विशुद्धि की पूर्ति का तीसरा अंतर्मूर्त, तब जाके उसको सम्यक्त तो होगा। इन तीन अंतर्मूर्तों से हीन है वो तीन हाँ इस तरह से, अर्थात ये तीन अंतर्मूर्त घटा देने पर अपना अपना उत्कृष्ट काल होता है। इसका अर्थ है अर्लीएस्ट कब प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करके पूरे के पूरे रहे पूरे लाइफ टाइम तक, वहां से सम्यक तो लेकर ही निकले हैं मनुष्यों में आएंगे, ऐसे जीवों की बात की। इसके आगे नव ग्रहवेग तक, इसके आगे यानी सौधर्म से लेकर नव ग्रहवेग तक क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल प्रयोग कर्म के उत्कृष्ट काल के समान है। मैंने पूरी लाइफ टाइम लिया उनका उत्कृष्ट काल, क्यों? क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होने वाले जीवों की बात है। सभी जीव सम्यक्त्व के साथ नहीं उत्पन्न होंगे, कोई बाद में भी सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे, परंतु बाद में करेंगे तो कुछ हीन कहना पड़ेगा। हमें तो मैक्सिमम काल गिनना है, तो जो सम्यक्त्व के साथ आए हुए है उनका काल कितना होगा, वहां की जो उत्कृष्ट उन्होंने आयु गिनी है उतना। 33 सागर वाला तो ऊपर का है, यहाँ तो देखो देखो ग्रहवेग तक की बात है थी ना अपनी, ग्रहवेग तक की बात है, ऊपर की बात छोड़ी थी। हाँ तो सौधर्म की साधिक ने ढाई सागर में अंतर्मूर्त कम, इस तरह से जो हमने उत्कृष्ट आयु गिनाई थी, वो सारे जीव जो सम्यक्त्व के साथ जन्मे हैं उनकी अपनी जो उत्कृष्ट वहां की लाइफ स्पैन है उतना उनका क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल है, ये उनको कहना है। अब कहते हैं अर्ची अर्ची मालिनी वज्र वैरोचन सोम सोमरुचि अंक स्फटिक और आदित्य, इन नौ अनुदिशों में, ये विमानों के नाम हैं, अनुदिश विमान, यानी बीच में एक होता है इंद्रक और उसके पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में एक एक चार हो गए, चार एक पांच हुए, आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान में एक एक, तो इस तरह से नौ होते हैं। क्रिया कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा, अभी एक जीव की अपेक्षा वहां की जघन्य आयु लेना जघन्य काल, और उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट काल, पर वहां सारे ही सम्यक्त्व के साथ ही जन्मते हैं ये नक्की है। हाँ इसलिए एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय अधिक 31 सागर, 31 सागर ग्रहवेग की उत्कृष्ट आयु थी, उसमें एक समय अधिक ऊपर की जघन्य आयु हुई, और उत्कृष्ट काल 32 सागर। अब विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, ये जो सर्वार सिद्धि के बाजू के चार विमान, इन चार अनुत्तरों में क्रियाकर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय अधिक 32 सागर, और उत्कृष्ट काल 33 सागर। सर्वार सिद्धि में वो जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं, सारे 33 वाले एक समय भी कम नहीं ऐसे वहां उत्पन्न हो गए। सर्वार सिद्धि विमनवासी देवों के क्रियाकर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यानी वहां एक समय कम वाले भी जीव नहीं उत्पन्न होंगे, ये कहना चाहते हैं। अब इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से, अभी तक हमने गति मार्गणा देखी और बहुत विस्तार से उसकी चर्चा हुई है ना। अब इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के भेद है। जब पंच इंद्रिय कहेंगे तब उसमें मनुष्य देव नारकी सब आ गए, तो इस तरह से अभी सोचकर हमको उसके कौन से कर्म होंगे उसकी बात देखनी है और फिर उसका काल भी डिराइव करना है। यहाँ काल में एक इंद्रियों का रहने का उत्कृष्ट काल हमको मालूम होना चाहिए, एक जीव की बात निकालनी है तब। तो एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल एक जीव का अपेक्षा एक भाव नहीं लेना, एक इंद्रियों में रहने का, हमने एक भाव नहीं पूछा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय अलग अलग संख्यात हजार वर्ष और पंचेंद्रियों में सौ सागर पृथक जो कहते हैं, या उसमें 1000 सागर भी आता है ना, हजार सागर आता है, फिर संगी में रहने का 100 सागर पृथक आता है। इस तरह से त्रस केवल बताएंगे वो कायिको में आएगा, कायिको में चले जाएगा। षटकाय के भेद है उसमें स्थावर और त्रस के भेद हो गए। त्रस में रहने का काल 2000 सागर और साधिक 2000 सागर कहेंगे, वो बात अलग है। यहाँ तो हम इंद्रियों की अपेक्षा से बात करें, अभी आएगी बात। देखो इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एकेंद्रियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, ये तो सब जगह लागू होगा नाना जी। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, एक लब्धि अपर्याप्त का भव किया एक इंद्रिय का और अन्य पर्याय में चला गया। उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहते हैं, असंख्यात की वैल्यू कितनी है, तो आवली के असंख्यातवा भाग वाला असंख्यात, ऐसे एक पुद्गल परावर्तन दो पर ऐसे कितने असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब एक इंद्रियों की बात हुई, अब बादर एक इंद्रियों में रहने का काल है, लगातार बादर एक इंद्रियों में रहने का काल, कभी पर्याप्त हो कभी अपर्याप्त हो, पर बादर एक इंद्रिय हुआ सूक्ष्म में गया नहीं, उसका कितना काल है वो बता रहे। बादर एक इंद्रियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, यानी बादर अपर्याप्त का एक भव किया, और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, हमने देखा था बादर एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात भाग है जो असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के बराबर है, क्योंकि एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कितनी है 20 कोड़ा कोड़ी सागर की, और ऐसे कितने असंख्यात, हाँ असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, बराबर है, ये बादर एक इंद्रिय कह दिया। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों की, अभी अपर्याप्तों को छोड़ो, पर्याप्त मात्र पर्याप्तों में रहा, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त, तो बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त। देखो अपर्याप्तों में क्षुल्लक भव ग्रहण करते हैं और पर्याप्तों में अंतर्मूर्त कहते हैं, क्योंकि उनकी जो आयु मिनिमम भी आयु अंतर्मूर्त की होती है, और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। ये किसकी बात है, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों की बात है। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, बादर एक इंद्रिय के अपर्याप्त का भोग किया, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अपर्याप्त में से अपर्याप्त अपर्याप्त में से अपर्याप्त लगातार कितने हो सकते हैं, तो कहते हमने देखे ना सूक्ष्म के तो हमने 5 भेद किए और बादर के तो 6 भेद किए थे, और हर हर इसमें 1100 कितने हमने देखे ना बहु किए थे, 1106 देखे थे, कितने देखे थे, क्योंकि 66132 होते 11 में मिलकर, तो एक एक पर्याय में कितने भाव किए उसमें देखो, सभी एक इंद्रिय के भेद उन्होंने 11 किए, सूक्ष्म के 5 और बांदर के 6, 66132 डिवाइडेड बाय 11, 1166 6012 भाव एक एक के होंगे, 6012 होगी ना, तो इसमें तो पर्याप्त बादर जीव 6 है, सूक्ष्म जीव 5 है, तो इसको इससे गुना करना, इतने भाव उसके हो गए एक अंतर्मुर्ख में, ये कहना चाहिए इतने भाव हो गए। हाँ, एक एक पर्याय में 6012, तो बादर के 6 हो गए ना, क्योंकि बादर में हम देखते हैं बादर निगोद भी होते हैं और बादर प्रत्येक वनस्पति भी होती है, इसलिए बादर में 6 भेद होते हैं, सूक्ष्म में 5 भेद होते हैं। तो यहाँ के तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त में हर एक उसके जो भेद है ना बादर के 6 भेद, उसमें 6012 भव करेंगे। अब सूक्ष्म एकेंद्रियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है, यानी सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त का एक भव किया उसने, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। देखो ये विशेषता है, ये सूक्ष्म जीवों में रहने का उत्कृष्ट काल है, कितना असंख्यात लोक, कभी पर्याप्त हुआ कभी अपर्याप्त हुआ। अभी सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों के देखो, अगर लगातार पर्याप्त में रहेगा ना सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त, तो अंतर्मूर से ज्यादा नहीं रहेगा, अकेला अपर्याप्त 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 अंतर्मूर से ज्यादा नहीं रहेगा, पर कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त होता रहेगा, तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक सूक्ष्म निगोद में रहेगा, ये कह रहे। इसलिए कहते सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य, वो ध दिख रहा है जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्त जीव है ना, इसलिए अभी क्षुल्लक भव नहीं कहा, अंतर्मूर्त का, और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है, यानी लगातार सूक्ष्म के पर्याप्त 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 भोग करेंगे तो अंतर्मुख। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भोग ग्रहण, और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख, क्योंकि वो तो अपर्याप्त 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 में रहने का, यानी वो एकेंद्रिय और उसके सारे भेद हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, द्विंद्रिय तीनद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों के तथा उन्हीं के पर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, ते नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, क्योंकि इन पर्याय में हमेशा कोई ना कोई जीव रहेगा ही रहेगा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव प्रमाण और अंतर्मूर्त, क्योंकि क्या है द्विंद्रिय कहने से उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए, और बाद में जीव उन्हीं के पर्याप्त यानी द्विंद्रिय और द्विंद्रिय पर्याप्त, ऐसे दो दो भेद देख रहे हैं, द्विंद्रिय कहने से पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है, तो जो अपर्याप्तों की जघन्य आयु है वो सामान्य द्विंद्रियों में लेंगे और पर्याप्तों के लिए अंतर्मूर्त कहेंगे, इसलिए जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त, और अंतर्मूर्त यानी पर्याप्तों की अपेक्षा, और उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है, द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय अपर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण अपर्याप्त ही लिए नहीं, सभी अपर्याप्त लिए। और उत्कृष्ट काल 80, 60 और 40 अंतर्मूर्त प्रमाण है। इसका अर्थ यह है, हाँ, एक अंतर्मूर्त में, वो अंतर्मूर्त भी बड़ा है जो उसमें भी एक एक की आयु कितनी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त। तो ऐसे अंतर्मूर्त में द्विंद्रिय के कितने भव होते हैं, तो 80 होते हैं, तीन्द्रियों के 60 होते हैं, चतुरिंद्रियों के 40 होते हैं, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, वो दास सब जगह उन्होंने ढाई लिखा है। नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। अपर्याप्त के भव, देखो जगन्य काल शुद्रक भ्रव, अपर्याप्तों की बात है। और अपर्याप्तों में उत्कृष्ट काल 80 अंतर्मूर्त, यानी वो एक एक छोटा भाव का एक अंतर्मूर्त लेके 80 अंतर्मूर्त, यानी 80 अंतर्मूर्त मिलकर भी एक ही अंतर्मूर्त हुआ। अब पंचेंद्रियों की बात चल रही है, हो गई ना संख्यात हजार वर्ष, संख्यात हजार वर्ष बता दिए, यानी सामान्य के लिए भी संख्यात हजार वर्ष कहेंगे और पर्याप्तों के लिए भी संख्यात हजार कहेंगे, क्योंकि वो पर्याप्तों की अपेक्षा इतनी लंबी आयु हो सकती है ना। अब कहते हैं पंचेंद्रियों की बात, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के, वो प के ऊपर बिंदी देना, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, यदि नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव के देखो फिर से द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय तक का क्या प्रयोग कर्म और समवदान है और अधक कर्म है। अधक कर्म एक समय से लेकर असंख्यात लोग सबके लिए, अरे चतुरिंद्रिय तक काहे का होगा ना, तप कर्म कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, अभी पंचेंद्रियों की बात है, वहां पर कहाँ लिखा है, देखो 80, 60 और 40 के बाद पंचेंद्रिय की शुरुआत हुई। अभी मैं पंचेंद्रिय की शुरुआत की मैंने पढ़ना कि पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, ये तो ठीक है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त, यानी सामान्य पंचेंद्रिय कहेंगे तो क्षुल्लक भव और पंचेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे तो अंतर्मूर्त, तथा उत्कृष्ट काल, ये दोबारा तथा आया वो निकाल दो, उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक हजार सागर, ये सामान्य पंचेंद्रियों के लिए उत्कृष्ट काल कितना है, पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक हजार सागर, सामान्य से पंचेंद्रिय, यानी वो संगी हुआ असंगी हुआ पर पंचेंद्रिय पना नहीं छूटा, और पंचेंद्रिय पर्याप्त का पर्याप्त रहा तो 100 सागर पृथक्त्व प्रमाण, यानी पंचेंद्रिय अपर्याप्तों में नहीं गया तो पर्याप्त अपर्याप्त उन पंचेंद्रिय में ही रहा तो कितना हुआ, पूर्व कोटि पृथक्त्व और हजार सागर, और वो 100 सागर पृथक्त्व यानी करीबन 900 सागर ले लो, और ये हजार सागर से भी पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक, यानी बीच बीच में अपर्याप्त भव होने से उनके भव बढ़ते हैं, ये बात बताना। अब अधक कर्म क्या होगा, एक समय से असंख्यात लोग सबके लिए, ईर्ष्यापद कर्म जो पंचेंद्रियों में वो कितना काल, मिनिमम एक समय, पंचेंद्रिय इतनी अपेक्षा अपने, और मैक्सिमम पूर्व कोटि में कुछ का, तप कर्म का, तप कर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा, हाँ, क्योंकि अंतर्मूर्त तो संयम ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाँ, और बाकी हाँ उसका भी, कुछ कम पूर्व कोटि। क्रिया कर्म का काल, अभी पंचेंद्रियों में क्रिया कर्म का काल बताना है। हाँ बोलो ना कितना। देखो हमने साधिक 66 सागर लिया था और साधिक में उन्होंने जो बताया था तो 66 सागर पहले औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, फिर वेदक हुआ तो 66 सागर, फिर बाद में उन्होंने अंतर्मुद पहले क्षायिक करके 33 सागर और बढ़ाए थे। हम साधिक 66 सागर कहेंगे, वो क्रिया कर्म का हो गया। पंचेंद्रिय अपर्याप्त कों के, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहण प्रमाण, और उत्कृष्ट काल 24 अंतर्मूर्त है। ये 24 अंतर्मूर्त है ने, ये किसके? पंचेंद्रियों के। उसमें 8 असंगी पंचेंद्रिय, 8 संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और 8 मनुष्यों के भव होते हैं, लब्धि अपर्याप्तकों के, इसलिए 24 कहा। ख्याल में आई बात? देखो ये लगातार भव की बात है, 8 8 8 मिलकर 24, ये सभी अपर्याप्त है, पंचेंद्रिय अपर्याप्त। हमने देखा एकेंद्रिय अपर्याप्तों के लगातार भव कितने होते हैं, तो 66,132, द्विंद्रिय के 80, तीनद्रिय के 60, चतुरिंद्रिय के 40, पंचेंद्रियों के 24, 24 में 8 है असंगी तिर्यंचों के लिए पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के लिए 8 है, संगी पंचेंद्रिय के लिए और 8 है मनुष्य अपर्याप्त के लिए। देवनार की तो अपर्याप्त होते ही नहीं है लब्धि अपर्याप्त। तब यहीं रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं भाई।